نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 110 سے 120 تک کریں گے. اور جو میں نے آپ کو پچھلا سبق پڑھایا تھا، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اب امت مسلمہ کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کیسے دنیا میں رہنا ہے، کیسے ایز امت تم نے چلنا ہے. تو یہ انسٹرکشن سورہ بقرہ میں بھی دی گئی تھی. یہاں آیت 120 جس تک آج ہمارا لیسن مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہاں تک یہ ساری انسٹرکشنز چل رہی ہیں. پہلے آپ کو یاد کرا دوں کہ وفد نجران کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی، عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی جو اہل کتاب کی جو ان کے شکوک و شبہات تھے، جو اعتراضات تھے ان کے جوابات، اور ان کو مباہلے کی بھی پھر دعوت دی تھی. آپ کو یاد ہوگا، یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا سیکنڈ پورشن میں امت مسلمہ کو ہدایات دی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد تھرڈ پورشن جو 120 آیت کے بعد شروع ہوگا، اس میں ہم احد کے بارے میں پڑھیں گے. یہ مدنی صورت ہے، ابھی آگے انشاءاللہ مدنی صورتیں چلنی ہیں. ابھی سورہ نساء بھی مدنی صورت، سورہ مائدہ بھی مدنی صورت، پھر سورہ انعام میں جا کے ہم مکی صورت پڑھیں گے. تو ان میں بھی آپ دیکھیں گے اہل کتاب کی اس قسم کی باتوں کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. اور اس کی وجہ، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو پہلے یہ منصب دیا گیا تھا کہ وہ دنیا کی امامت کریں. امامت سے مطلب کیا؟ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کے پیغام کو پہنچائیں. مگر انہوں نے اس کام کو پورا نہیں کیا، تو ان کو ہٹا دیا گیا اس عہدے سے. مثلا کسی کو پریزیڈنٹ بنایا جائے، وہ اپنا کام ہی نہیں کرتا اگر، تو کیا ہوگا؟ پھر اس کو ہٹا دیا جائے گا. کسی کو کسی جگہ کا وزیر بنایا جائے، کسی محکمے کا وزیر بنایا جائے، اور وہ اس محکمے میں کوئی کام ہی نہ کرے، بس یہ پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھا رہے اور کہے میں تو وزیر بن گیا اور اسی کے اوپر خوش ہوتا رہے، تو اس طرح تو نہیں کام چلتا نا. جب بھی کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ذمہ داری آتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے وہ وزیر ہے، چاہے وہ صدر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. آپ دیکھیں، کوئی ٹیچر ہے، کوئی پرنسپل ہے، کیا کوئی ذمہ داری ہوتی ہے؟ یا وہ بس جھنڈے والی گاڑیوں میں گھومتے رہیں اور اپنے تمغے لگا کے پھرتے رہیں اپنی نام کی تختی کے، میں تو پرنسپل ہوں، یا میں تو وزیر ہوں، یا میں تو بڑا صدر ہوں، یہ کرتے ہیں؟ نہیں نا، ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہر عہدے کے ساتھ. یہ بھی جو عہدہ ان کو ملا تھا، تو ان کو ذمہ داری دی گئی، لیکن انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا. ہم پچھلے سبق سے دیکھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا، آپ نے آیت 104 پہ غور کیا. جو پورا ہفتہ ہوتا ہے نا، آپ کے لیے غور کرنے کے لیے ہوتا ہے، ان آیات کو ابزارب کرنے کے لیے. یہ نہیں ہوتا ہے کلاس کے بعد بس قرآن بھی بند کیا، نوٹس بھی بند کیا، اگلے جمعے کو کھول لیا، ایسے نہیں. علم اس طرح نہیں آتا. علم آتا ہے جب آپ اس کو بار بار پڑھتے ہیں. امام بخاری سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسے حافظہ اتنا ہے، تو انہوں نے فرمایا بار بار اس کا دور کرنے سے. تو جب آپ بار بار کوئی چیز پڑھیں گے نا، تو وہ آپ کے اندر جذب ہو جائے گی، پھر آپ کو غور و فکر کرنے کا بھی پتہ چلے گا. تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کیا کیجئے جو آپ نے جمعے کو پڑھی ہیں، کہ دیکھو ہم نے یہ آیتیں پڑھی، اس سے تمہیں کیا پتہ چلا، اس نے تم نے کیا سوچا، کیسے ہم اس کے اوپر عمل کریں. تو یہ ایک تو آپ کو اس سے ہیلپ ملے گی کہ دوسرے کے کیا ویوز ہیں، دوسرے کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں. اور اسی لیے ہم نے گروپ ایکٹیویٹی بھی اسی لیے رکھی ہوئی. وہ کوئی کام نہیں ہے، بلکہ وہ جب انسان پڑھتا ہے نا، تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنی کوئی بات شیئر کروں. تو یہ آپ کی شیئرنگ ہوتی ہے، اس میں آپ اپنی دوستوں کے ساتھ بھی کریں. اور جب انشاءاللہ تعالی ہم خیال एक ही माइंड सेट के दोस्त होते हैं तो बड़ा फायदा होता है, फिर इंसान खुल के उनके साथ ये बातें कर सकता है। हर एक के साथ आप शायद नहीं कर सकें क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, तो जरूर इनको शेयर किया कीजिए। आप देखिए, आप हमने आयत 104 में कितनी जबरदस्त बात पढ़ी थी, अल्लाह ताला ने 3 पॉइंट्स हमें दे दिए, एक्शन के लिए एजेंडा दे दिया, ये आपका एजेंडा है, ये आपने एक्शन करना है। उन 3 पॉइंट्स पे आपने गौर किया कि तदाउना इलल खैर कैसे करेंगे आप, सूरह नहल आयत नंबर 30 में कुरान को खैर कहा गया। तो ये ऐसे ही बात नहीं है कि भाई ऐसे ही हमने बना लिया कि भाई देखो तो बस ऐसे ही चीजों को कह देते हैं कि भाई कुरान की तरफ दावत देना, तो आप कैसे दावत देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो ये एक जिम्मेदारी लगा दी ना। अगर फलाह पानी है तो लोग कहते हैं नहीं बस आप लोगों का तो एक ही काम है, या ये पता नहीं कोई काम ही नहीं है, ये ऐसे ही करते रहते हैं, या इनको ये कहाँ से इसकी दलील है। तो इसकी दलील कुरान से मिल गई, और इमाम मालिक ने फरमाया था कि इस उम्मत के आखिरी हिस्से की इसलाह भी उसी तरह मुमकिन है जैसे पहले हिस्से की इसलाह हुई थी। और पहले हिस्से की इसलाह कैसे हुई थी, कुरान के जरिए। ठीक है, तो आज भी कुरान से दिल बदलेंगे, कुरान से माशरे बदलेंगे अगर हम चाहते हैं कि इसलाह हो, वरना इसलाह इसके बगैर नहीं हो सकती। तो ये हमने सोचना है कि हमने कैसे करना है ये काम, क्या इफेक्टिव टूल्स हो सकते हैं इसके लिए, किस तरह किया जाए, किसी को दावत दी जाए, किसी के पास जाया जाए, किसी को कॉल की जाए, कहीं कोई एड लगाया जाए, कहीं क्या करें हम, चैन से बैठ नहीं जाना कि बस आयतें पढ़ ली और उसके बाद चलो आगे चलो अगली आयत में क्या है। फिर उसके बाद हमने, कोई आपको इसमें फेमिलियर आयत नजर आई है जो आपने पहले पढ़ी हुई थी पिछले सबक में, या पहले कभी सुनी थी? 102 आयत कभी सुनी हुई आपने पहले? हाँ, जिन लोगों ने भी कोई निकाह अटेंड किया हो, उनकी अपनी शादी हुई है, शादीशुदा जो लोग हैं या जिन्होंने किसी का निकाह अटेंड किया है, तो उन्होंने कभी सुनी है? हाल उस वक्त तो कोई और ही ख्यालात होते हैं कि इंसान गौर ही नहीं करता कि वो निकाह के खुतबे में क्या बोल रहे हैं। तो अब याद रखिएगा, निकाह के खुतबे में ये वाली आयत पढ़ी जाती है, और इस आयत में भी हमें बड़ा ही एक जबरदस्त, हमें एक बात बता दी गई, हमें एक जिम्मेदारी दे दी गई कि देखो पूरी जिंदगी तुमने इसी दीन पे रहना है, फरमा बरदारी की हालत में मुस्लिम बन के रहना, तभी तो मौत भी मुस्लिम की हालत में आएगी। क्योंकि इंसान की जो दुआ होती है, हम दूसरों को भी यही कहते हैं हमारे लिए दुआ कीजिए, खात्मा बिल खैर की दुआ करें, तो खात्मा बिल खैर की दुआ हम खुद भी करते हैं, कराते भी हैं। खात्मा बिल खैर कैसे होगा जब हम अपनी पूरी जिंदगी फरमा बरदारी में गुजारेंगे, तो मौत भी इंशाल्लाह उसी में आएगी। तो ये एक भारी मुतालबा है जो हमसे किया गया कि तुमने सारी जिंदगी फरमा बरदारी में गुजारनी है, ताकि मौत भी तुम्हें आए तो ये ना हो कि नाफरमानी की किसी हालत में आ जाए, वो भी फरमा बरदारी में आनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट आयत 103 पढ़ी थी, और उसमें हमें कहा गया कुरान को मजबूती से थाम लो। कैसे थामेंगे, पकड़ लें क्या हम सारे कुरान को, जोर से पकड़ के रखा हुआ आपने क्या? नहीं, मतलब ये है कैसे थामेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। किसी को पता है कैसे थामेंगे? इसके हकूक अदा करके, इसका हक दे के। उसके हकूक क्या है, 5 हकूक हैं इसके। पहला हक क्या है, कुरान पर ईमान लाना। दूसरा हक है इसकी तिलावत करना। तीसरा हक है इसको सीखना समझना, जैसे कि हम इन कोर्स में कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ईमान हम कुरान पे लाए हुए, इसकी तिलावत भी करते हैं, इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। फिर चौथा इसका हक है इस पे अमल करना, इसको नाफिज करना, यानी इसको इसको अमल में लेकर आना, इसका निफाज करना। पांचवा है कि इसको फैलाने की कोशिश करना जो तदाउन इलल खैर में है। तो ये हकूक है इसके, जिसकी हम कोशिश, सारी की सारी ये कोशिशें हम कर रहे हैं इन कोर्स में। तो आप लोग पूछते हैं ना कि क्या ये फर्ज है, क्या इसको सीखना फर्ज है, पढ़ना फर्ज है, समझना फर्ज है, इस पे अमल करना फर्ज है, इसको फैलाने की कोशिश करना फर्ज है। क्या ये फर्ज है? ये फर्ज है कि नहीं है? जब अल्लाह ताला फरमा रहे वा तसीमू, ये क्या है? अमर है, हुक्म है, मजबूती से पकड़ लो। सिर्फ पकड़ना नहीं है, मजबूती से पकड़ लेना, ठीक है ना? मजबूती से, कि जाने ना पाए। ये नहीं कि रमजान के रमजान पकड़ना। और तफरके की जो यहां पे कहा गया कि उससे बचो, तफरके की भी वजह क्या है? मुसलमानों के ना जवाल की दो ही वजूहात हैं। नंबर वन, कुरान को छोड़ दिया है। नंबर टू, आपस की फिरकावारियत, आपस में बटे में। और कुरान को छोड़ने की वजह से ही असल में आपस में भी ये तफरकाबाजी है, ये जो टूटे में है, ये इसी वजह से है कि कुरान को छोड़ा हुआ। तो बेसिक वजह ही है कुरान को छोड़ देना। आज उम्मत का हाल देखें, आपकी 99% आबादी ऐसी है कि उन्होंने सारी जिंदगी में कुरान को पूरा एक दफा भी समझ के नहीं पढ़ा हुआ। आप अपने निजामे तालीम में देख लें कुरान कितना है, कहाँ है कुरान? आज पूछते हैं ना आप सब लोग कि हाय क्यों है उम्मत फिरका फिरका, क्यों ये इत्तेहाद क्यों नहीं है, हाय काश इत्तेहाद हो जाए, काश ये हो जाए। वजह उसकी ये, अल्लाह की रस्सी कोई नहीं थामा हुआ। अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। इल्मी इख्तलाफ मैंने आपको बताया था ना, वो अपनी जगह है, वो उससे कोई मसला नहीं होता। तफरका बाजी, कुफर के फतवे, दूसरे को कहना कि नहीं वो तो सही है, नहीं हम ही है, बस सारा कुछ। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी। तो ये कुरान को छोड़ने की वजह है तफरका बाजी, जो हमारे जवाल की आज वजह बनी है। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट आयतें पढ़ी हैं लास्ट टाइम, इसलिए उनके ऊपर जरूर आप गौर करिएगा। और तफरका बाजी का और आपस में इख्तलाफ का, जबकि हक सामने आ जाए, उसकी सजा क्या है? अजाबुन अदीम। और ऐसे ही लोगों के चेहरे पर सियाह होंगे, ठीक है? तो ये थोड़ी सी समरी थी आपके लास्ट लेसन की। आज का जो लेसन है वो भी इसी से रिलेटेड है, वो भी उसी की कंटिन्यूएशन है। और ज़्यादा हम इस चीज़ के ऊपर आज बात करेंगे कि हमने इन आयात को अमल में कैसे लेकर आना है, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे बैठे इसलिए नहीं हुए कि हम बस ये कुरान के, देखिए मैंने आपको जो हकूक बताए समझ लेने के बाद क्या है, बस बैठ जाए, समझ लिया, हाँ बस हमें समझ आ गई अच्छी तरह। नहीं, आगे बढ़े, अमल, हम अमल करना चाहते हैं। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 110, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम हो बेहतरीन उम्मत। अब यहाँ तक बात बड़ी मजे की लगती है, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि ओ हम बेहतरीन उम्मत हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, ठीक है ना? अब इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिल गई कि आपको डिक्लेयर कर दिया गया कि यू आर द बेस्ट। और उम्मत क्या होती है? उम्मत वो नहीं होती कि जो सारे एक ही लैंग्वेज बोल रहे हो, एक ही इलाके के रहने वाले। उम्मत वो होती है जो एक नजरिए की होती है, एक उनकी गोल होता है, एक उनका मकसद होता है, वो उम्मत होती है, वो उम्मत बनती है, चाहे वो कहीं भी हो। आज उम्मत नहीं है ना, आज ग्रोह है, आज कौमियतें हैं। कौमियत, मेरी, मैं इस कौम, वो उस कौम से, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि कौम क्या, आपका नाम क्या है, मगर उसके ऊपर, उससे अबव है उम्मत। हम कौम को ही सब कुछ समझ के बैठ जाते हैं ना, कि बस उम्मत को छोड़ो, कौम में, अब हमारी कौम का बंदा चाहे वो ये हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो कुछ है, मगर हम बस एक कौम के। ये नहीं, उम्मत फर्स्ट है और कौमें बाद में है, ठीक है? तो अब यहां पे जहां हमें पता चलता है कि उम्मत मुस्लिमा को कहा गया कि वो बेहतरीन उम्मत है, वो क्यों बेहतरीन उम्मत है? क्या क्या इनके अंदर कमाल क्या है? सबसे पहले तो ये बात है कि ये बेहतरीन उम्मत कुरान ने डिक्लेयर किया, खुद नहीं हम कह रहे कि अच्छा हम बेस्ट हैं, ये कुरान कह रहा है, अल्लाह का कुरान। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में जो फजीलतें फरमाई कि जो मुझे दिया गया है वो नेमतें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई थी, उनमें एक बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो ये थी कि मेरी उम्मत सब उम्मतों से बेहतर बनाई गई है। ये मुसनद अहमद की रिवायत है। इसी तरह एक और फजीलत आपको बता दूं, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम, अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम, अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम, अल्लाह हमें उनमें से कर देना। तो जिनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होंगे, सब एक जैसे रंग के होंगे, मैंने अपने रब से गुजारिश की कि अल्लाह इस तादाद में और इजाफा फरमा दे, तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया हर एक के साथ 70,000 और भी, यानी हर एक के साथ 70,000 और भी, तो कितने हो गए? तो 70,000 सिर्फ होते तो कम होता शायद, लेकिन हर एक के साथ और 70,000 जाएंगे तो कितने हो गए? सुभान अल्लाह, मुस्नद अहमद की ये भी रिवायत है। और फिर इसी तरह एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत की 120 सफ़े हैं, 120 सफ़े हैं अहले जन्नत की, जन्नत में जितने जाने वाले ना उनकी 120 सफ़े बनेंगी, जिनमें से 80 सफ़े मेरी इस उम्मत की हैं, 80 सफ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया तुम अहले जन्नत के चौथाई होगे, यानी 1/4। तो सहाबा ने अल्लाह अकबर कहा, फिर फरमाया बल्कि तुम उनका 1/3 होगे, फिर फरमाया, फिर सहाबा ने अल्लाह अकबर कहा, फिर फरमाया बल्कि तुम निसफ होगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम 2/3 हो गए, यानी 2/3, यानी मेजॉरिटी जन्नत में जाने वालों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होगी। और बुखारी में मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में हम सबसे आखिर में आए और जन्नत में सबसे पहले जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले कोई उम्मत जन्नत में नहीं दाखिल हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक मैं जन्नत में दाखिल ना हो जाऊं अंबिया पर जन्नत में दाखिला हराम है, और जब तक मेरी उम्मत ना दाखिल हो जाए दूसरी उम्मत पर दाखिला जन्नत में हराम है। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी फजीलत है इस उम्मत की। तो ये मैंने और आपने कोई हासिल नहीं की कोई एप्लीकेशन दे के, अल्लाह ताला ने हमें इस उम्मत में पैदा किया, इसके ऊपर हमें इतना शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो निस्बत है ना, जरा सी भी निस्बत, उसके ऊपर भी देखें ये है, ये मिलने वाला है, किसी का कमाल नहीं है, ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत की वजह से कि ये आपकी उम्मत है। अल्लाह अकबर। तो फिर ये तो थोड़ी सी मैंने आपको फजीलतें बता दी इस उम्मत की, मगर अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंदे को सदर बनाया जाता है, एक बंदे को वजीर बनाया जाता है, तो ठीक है वो बहुत बड़ा ओहदा है, किसी मुल्क का सदर बन जाना, किसी को बादशाह बना दिया जाता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, मगर क्या उसके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या नहीं? होती है ना, जितना बड़ा ओहदा उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ज्यादा होती हैं, उसको फैसले करने, उसको काम चलाने के लिए उतनी बड़ी कोशिश, मेहनत, जिम्मेदारी के साथ चलना पड़ता है ना? तो ये खैरा उम्मतिन ऐसे ही नहीं है, आगे भी सुने, फिर हम तो यहाँ तक सुन के बस ओ अल्लाह अकबर और बस हम तो क्या बन गए, उसके बाद आगे तो देखें। उखरिजत लिन्नास, तुम निकाली गई हो लोगों के लिए, किसके लिए? लोगों के लिए तुम निकाली गई हो, क्या करने के लिए? यानी लोगों के ऊपर तुम, ये नहीं कहा कि आके लोगों में तुम्हारे ऊपर इतना तुम्हारे लिए फखर की बात है, तुम बस क्या बन गए हो,
तुम लोगों में बेस्ट हो गए, नहीं तुम निकाली गई हो लोगों के लिए, क्या करने के लिए, यानी लोगों में क्या करना है, तमुरून बिल मारूफ, इसलिए तुम बेस्ट हो कि तुम लोगों में भलाई की दावत देते हो, हुक्म देते हो, वतनहाउना अनिल मुनकर, और बुराई से तुम रोकते हो, वतुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर तुम्हारा ईमान है, वैसा ईमान, ऐसा ईमान नहीं कोई पैदाइशी ईमान, हमारा तो नाम मुसलमानों वाला तो बस हमारा ईमान हो गया, नहीं बल्कि तुम्हारा ईमान जैसे रिक्वायर्ड है, ईमान जैसे ईमान होना चाहिए, ठीक है। तो ये ईमान बाद में क्यों आया, ईमान को तो हमारे नजदीक तो पहले सबसे आना चाहिए, इसलिए कि जब ईमान होगा तो ये काम मुकम्मल होंगे, ईमान के बगैर ये काम भी कोई करे तो कोई ये काम का फायदा नहीं, ईमान के साथ है ये काम, ईमान का हिस्सा है, इसके बगैर ईमान नहीं है, ठीक है। तो ईमान इसलिए कि पहले दो कामों की वजह से ही मुसलमान दूसरी उम्मतों के ऊपर फजीलत रखते हैं, ईमान का दावा तो और भी करते थे, मगर ये दो काम हैं जिनकी वजह से तुम्हारी फजीलत है दूसरों पर, ठीक है। तो हजरत उमर ने क्या फरमाया, उन्होंने हज के मौके पर फरमाया था कि जो ये दो शराइत पूरी करता है वो ही है जो के इस खैर उम्मत में से है, जो ये दो शराइत पूरी नहीं करेगा उसका फिर खैर उम्मत से भी कोई ताल्लुक नहीं है, यानी क्या, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर की, और जो ईमान बिल्ला, तीन शराइत हो गई, जो इनको पूरी करता है वो ही है जो खैर उम्मत में से है, और जो नहीं करता तो फिर वो ये इसको ना समझे कि मैं कोई, वो ये ताज पहन के समझे कि भाई मैं खैर उम्मत में से हूं, वो खैर उम्मत में से नहीं है, वो इस बेहतरीन उम्मत का पार्ट नहीं है, क्योंकि इस बेहतरीन उम्मत की तो ये है अल्लाह ताला ने जो उसकी शराइत बता दी, ये कंडीशंस बता दी, तो जो इस पोजीशन को हासिल करना चाहता है वो तो उसको ये काम करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि बगैर इन कामों की किए हुए कोई इंसान अपने आप को इनमें शामिल समझ ले, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये काम कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये काम फर्ज हैं कि सुन्नत है कि नफल है कि क्या है, हम तो ये सोचते हैं ना, देखें जब कह दिया गया ना कि तुम बेहतरीन उम्मत हो इसी वजह से कि तुम ये काम करती हो, तो फिर बात ही खत्म हो गई। अब हजरत उमर के इस कॉल से सबको समझ आ गई ना कि बेहतरीन उम्मत बनने के लिए यानी आपको ये काम करने जरूरी है, इसके बगैर आप इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं इस चीज की तरफ कि क्या होता है मारूफ, क्या होता है मुनकर, और अमर कैसे, हुक्म कैसे देते हैं, क्या डंडा लेके खड़े हो जाएं सारों को एक टीचर की तरह या एक पुलिस वाले की तरह या एक फौजी की तरह बस खड़े होके लोगों को सीधा कर दें, ऐसे करना ही, अमर के स्टेजेस होते हैं, अमर हुक्म करने को भी कहते हैं, हुक्म देना भी होता है, नसीहत करना भी होता है, एडवाइस करना, किसी को एनकरेज करना भी होता है, कभी कभी आप किसी को एनकरेज करके भी उसकी हौसला अफजाई करके भी उसको मारूफ के ऊपर दावत देते हैं, आप किसी को डांट डपट के भी करते हैं, किसी को शाबाश दे के भी करते हैं, यानी इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह से अमर बिल मारूफ, किसके साथ कर रहे हैं बात, आपका कितना दायरा कार है, आपका कितनी अथॉरिटी है, कितना आपका इख्तियार है। आप देखिए जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं वो आप अपनी दोस्त के साथ नहीं कर सकते, जो अपनी दोस्त के साथ कर सकते हैं वो बाहर किसी और के साथ मस्जिद में कोई आता जाता उसके साथ नहीं कर सकते, जो आप उसके साथ कर सकते हैं वो किसी और गैर मुस्लिम के साथ नहीं कर सकते। तो अमर के भी याद रखिए, डिफरेंट यानी स्टेजेस कह सकते हैं या डिफरेंट फॉर्म्स कह सकते हैं, कि डिफरेंट फॉर्म्स होंगी डिपेंडिंग ऑन कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं और आपकी कितनी ज्यूरिस्डिक्शन है, आपकी कितनी अथॉरिटी है। ठीक है, मसलन आप वालदेन के साथ उस तरह अमर बिल मारूफ को भी वालदेन को भी करना पड़ता है, आप नहीं कर सकते उस तरह, हस्बैंड के साथ उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। तो बाज जगह ये रिक्वेस्ट भी होती है। ठीक है, तो अमर को समझे पहले, तो अमर क्या है। और बाज दफा सिर्फ अपने किरदार से और अपने अखलाक से ही हुक्म देना होता है, यानी इंसान इस हद तक भी आ जाता है कि आप अपने आप खुद ही करते रहते हैं ताकि दूसरे को एक तरह से आप हुक्म ही दे रहे हैं। जब आप खुद नमाज के लिए खड़े हो गए तो जिनको आप नहीं कह सकते, जो ऐसी आपकी अथॉरिटी ही नहीं है वहां पे, उनको आपने नमाज पढ़ के दिखा दी कि आप एक तरह से उनको एक दावत दे रहे हैं। तो दावत देना भी अमर है। किसी को दावत देना, दावत से मतलब खाने की दावत नहीं, भलाई की दावत। ठीक है, तो किसी को इसकी दावत देना ये अमर बिल अमर है। ठीक है, तो पहले हमने अमर को समझा, अब आए मारूफ की तरफ, जानी पहचानी भलाई, वालदैन के साथ हुस्ने सलूक है, सच बोलना है, ईमानदारी है, रिश्तेदारों के साथ भलाई है, यतीम के साथ हुस्ने सलूक है, गरीब की मदद करना है, मिस्कीन बेवा की मदद करना है, ये और भलाई सबसे बड़ी भलाई क्या है, तौहीद, एक अल्लाह की तरफ बुलाना है, और वह तन्हाउ ना और तुम रोकते हो। अब रोकने का भी यही अमर, अमर का उलट नहीं है। ठीक है, अब रोकने के लिए भी डिफरेंट स्टेजेस हैं। रोकना भी हर एक को, ये नहीं खड़े उधर डंडा पकड़ के खड़े हो जाए रोकना, कहीं प्यार से रोकना है, कहीं डांट के रोकना है, कहीं किसी को कोई ऐसी बात कह के रोकना है जो कि उसके लिए उसके दिल को छू जाए। तो रोकने के भी डिफरेंट तरीके होंगे, वो भी डिपेंड करता होगा कि आप किस अथॉरिटी को रखते हैं। ये मैं इतना एक्सप्लेन पता है क्यों कर रही हूँ, मैं वैसे भी जा सकती हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं है कि मैं पूरा सबक आपको 10 मिनट में करा दूँ, लेकिन इसलिए कि जब आपने अमल करना होगा तो ये बातें अगर आपको पता होंगी तो तभी करेंगे ना। अगर पता ही नहीं होंगी, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर आज हमने पढ़ लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, और आपको पता है नहीं करना क्या है, तो क्या करेंगे फिर। तो इसलिए कि प्रैक्टिकली इसको हमने अप्लाई करना है, इस वजह से सिर्फ हमें इतनी डेप्थ में जाना पड़ता है, वरना कोई मुश्किल नहीं है, ये अल्फाज भी मुश्किल नहीं है, चलते जाओ बस खत्म करो सबक। तो अनिल मुनकर, मुनकर भी जानी पहचानी जो बुराई है, इंसान की तो तबीयत अंदर से कहती है कि एक खुदा है, सबसे बड़ा मुनकर तो क्या है, शिर्क, शिर्क, और उसके बाद सारी ईवल्स, सारी बुराइयां, इनको इंसान की अकल भी कहती है, जो शरीयत भी कहती है कि ये बुरी चीज है, उसमें सारी बुराइयां आ गई, सारी बेहयाइयां आ गई, सारी फहाशियां आ गई, बेईमानियां आ गई, झूठ आ गया, सूद आ गया, जिना आ गया, जितनी भी बुराइयां, तो इसमें छोटी से लेके बड़ी तक सार बुराई आ गई। इवन ये कि आप किसी को किसी जगह पे कूड़ा फेंकते हुए देखते हैं, ये मुनकर है। इंसान की तबीयत कहती है ना कि देखो यहाँ पे गार्बेज फेंक फेंक के शहरों के हाल बुरे किए हुए, खाली प्लॉटों में फेंके हुए, हमारे मुल्कों में तो कहाँ कहाँ फेंके हुए, क्या उनसे बर्बादियां होती हैं बाद में जब बारिशें होती हैं। तो मुनकर क्या है, उससे रोकना दूसरे को। तो मुनकर सिर्फ ये नहीं है कि नमाज कोई नहीं पढ़ा तो आप उसको कह रहे हैं कि भाई तुम क्यों नहीं पढ़े नमाज, ये सिर्फ मुनकर नहीं है, ये मुनकर में सारी बुराइयां आ गई। ठीक है, तो आप उसको जब रोकते हैं, जब आप उसको कहते हैं तुम ये क्यों कर रहे हो, एक छोटी सी की बात है ना, आप इसको शायद आपने कभी सोचा ही ना, आप ट्रैफिक है, अब आप उसके अंदर सही नहीं कोई चल रहा, मुनकर है, आप उसको रोकते हैं कि नहीं भाई तुम अपने रास्ते के अंदर चलो, दूसरे का रास्ता ना काटो, जिधर से ट्रैफिक आ रही है उधर से ना जाओ, मुनकर है। देखो रिश्वत ना दो, रिश्वत आपने दूसरे को रोका, ये मुनकर से रोका है। तो इसके भी दर्जे हैं, याद रखिए, जैसे मारूफ के लिए दर्जे हैं इसी तरह इसके भी दर्जे हैं। और देखिए भलाइयों के काम तो सारी दुनिया करती है, बड़ी भलाइयों के काम कर रही हैं, बड़े वेलफेयर के हो सकता है, लोग यतीम खाने बनवा रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, लेकिन मारूफ में ना सारी भलाई के काम आ जाते हैं। जो डिस्टिंक्शन है, जो खास क्वालिटी इस उम्मत की है, जो किसी और के अंदर नहीं है। और मैंने जैसे आपको ये बताया कि जब आप तौहीद की तरफ दावत देते हैं, तो ये सबसे बड़े मारूफ की दावत है। जब आप किसी को गुनाहों से बचने की दावत देते हैं, तो ये सबसे बड़ी दावत है। इसलिए क्योंकि ये उसकी आखरत को संवार देगी। कि ना, एक तो है वो भलाई के काम दुनिया के सिर्फ कर रहे हैं, आप इंसानियत की भलाई के लिए उठे हैं। आप स्कूल बनाने, अस्पताल बनाने, यतीम खाने बनाने, ठीक है, सच्ची है, भलाई के काम है, मगर किसी की आखरत को संवार देना कि वो जहन्नुम की आग से बच जाए, वो सबसे बड़ी भलाई है किसी के साथ। तो ये काम किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है, ये अल्लाह ने जिम्मा लगाया है, ये जिम्मेदारी उम्मते मुस्लिमा की है। जिस पोजीशन में भी उम्मते मुस्लिमा होगी, जिस पोजीशन में भी आप हों, जहां पे भी हों, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी पड़ती है। देखें, याद रखिए एक बात, अगर आप ये कहते हैं मैं तो नहीं ना ये काम करती, मैं तो नहीं ये बुराई करती, तो ये सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि गुनाह को ना करना अलग बात है और गुनाह से नफरत करना यह एक अलग बात है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे गुनाह नहीं करते, मगर वो उन गुनाहों से नफरत भी नहीं करते, कहते हैं ओके है, सो व्हाट। आज आप देखें, अल्लाह ताला माफ फरमाए, ये जो होमोसेक्सुअल्स हैं, इनके बारे में, यानी कौमे लूत वाला अमल जो करते हैं लोग, उनके बारे में बहुत सारे मुसलमान ही ऐसे हैं, वो कहते हैं हम तो नहीं करते ना, लेकिन हम इसको बुरा भी नहीं जानते, तो क्या हो गया अगर कोई करता था। तो कोई नागवारी नहीं है उनके दिल के अंदर इसके लिए। तो ये जरूरी है कि पहले बुराई को जाना जाए, तो इल्म जरूरी हुआ आपके लिए कि मुनकरात भी क्या है, फिर उसके बाद आप उस बुराई से नफरत भी रखते हो। ऐसा नहीं हो कि बुराई आपके सामने हो रही, हम तो नहीं ना करते, हम तो नहीं रिश्वत लेते, हम तो नहीं ये बुरा काम करते, मैं तो नहीं करती, ये काफी नहीं है, याद रखिए, ठीक है, ये काफी नहीं है। और अगर ये काफी होता तो फिर तो ये कह दिया जाता भाई तुम अपने अपने करो। देखें, यहां से पता चलता है कि उम्मत मुस्लिमा सेल्फिश नहीं हो सकती कि मैं तो नेक बन जाऊं और आप भी नेक बन जाएं, आप अपने घर में अल्लाह अल्लाह करती रहे, मैं अपने घर में अल्लाह अल्लाह करती रहूं, बस हम खुद तो नेक है ना, हमें क्या भाई, तुझे पढ़ाई क्या, पराई क्या पढ़ी है, अपनी नबेड़ तू, है ना भाई, तुझे क्या, दो लोग जो मर्जी कर रहे हैं तुम अपनी काम कर, ये आजकल कहा जाता है ना। लेकिन जब हमने हजरत उमर के बारे में ये सुन लिया कि उन्होंने ये आयत पढ़ के क्या फरमाया था, जिसको ये पसंद है कि इस उम्मत में से हो, उसे अल्लाह की इस शर्त को पूरा करना होगा, करना होगा, हम, मैं और आप खुद अपने अपने जगह नेक बन के सिर्फ रह के, और ये नहीं सोच सकते कि हम बस काफी है ये हमारे लिए, नहीं, इससे आगे हमें बढ़ना है कि हमें दूसरों को भी बताना है, दूसरों को भी मारूफ की दावत देनी है, कहीं हुक्म देके करेंगे, कहीं दावत देंगे, कहीं बुलाएंगे। जब आप किसी को कुरान की तरफ भी बुलाती हैं, तो क्या करती हैं, सबसे बड़ी नेकी तो ये है, सबसे बड़ी खैरख्वाही ये है, आप उसको मारूफ की दावत दे रहे हैं। इसी तरह मुनकर से रोकना, देखें आपको वो हदीस याद होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज्जा व जल ने जिब्राईल अलैहि सलाम की तरफ ये वही फरमाई कि फलां शहर को शहर वालों समेत उलट दो। तो जिब्राईल अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, ऐ मेरे रब, उनमें तो तेरा फलां बंदा है जिसने पलक झपकने की मिकदार में भी तेरी नाफरमानी नहीं की। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, उस शहर को उलट दो, वो बंदा मेरी वजह से एक साथ के लिए भी नाराज नहीं हुआ। यानी उसके सामने इतनी बुराइयां होती थी, उसके जरा भी तेवरी भी नहीं चढ़ती थी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि अल्लाह ताला की नाफरमानियां हो रही हैं यहाँ पे, जो भी सारी बुराइयां हो रही हैं, कि वो उसको कभी बुरा लग जाए, कभी वो उस चीज को समझे कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब तुम कोई बुराई को देखो तो उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो। क्या करो? अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो, यानी मना करो, अपने हाथ खड़े हो जाओ और कहो कि मैंने ये नहीं होगा। ठीक है, अगर इसकी ताकत नहीं है, अगर आप समझते हैं कि ये नहीं मैं कर सकती हर जगह, तो जाहिर है आप नहीं हाथ से रोक सकते, तो अपनी जुबान से उसको बुरा कहो कि नहीं ये करो, उसको मना करो अपनी जुबान से। ठीक है, अगर ये भी नहीं कर सकते, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करो? फिर उसको अपने दिल में तो बुरा जानो। और फरमाया ये कमजोर तरीन ईमान है, कमजोर तरीन ईमान, यानी अगर इस ये भी नहीं है तो एक हदीस में आता है फिर उसके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है, फिर उसमें बंदे में इतना सा भी ईमान नहीं है जो ये जिसको दिल में भी ना बुरा लगे, उसको नहीं फर्क पड़ता लोग जो भी कर रहे हैं, उसको वो इसको माइंड ही नहीं करता। करते हैं लोग, कर रहे हैं जी, आपको क्या, आप अपना काम करें ना, आपको क्या इतनी मुसीबत पड़ी हुई है, वो आगे से ये कहते हैं। तो याद रखिए बुराई की नफरत होना जरूरी, तभी तो देखिए ये ना कहने की बातें नहीं होती, ये कहने की बातें नहीं होती कि देखिए आप बुराई को देखें तो आपको मना करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब इंसान के अंदर ईमान होता है ना, ईमान, ईमान अल्लाह के ऊपर ईमान मजबूत होता है ना, जब अल्लाह से मोहब्बत बड़ी होती है ना, तो फिर उसकी नाफरमानी इंसान को गवारा ही नहीं होती, उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसको कुछ अंदर होने शुरू हो जाता है, अंदर उबाल पड़ने शुरू होते हैं, ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, उसको अंदर से होता है, ये किसी के बताने का बात नहीं है। नहीं जी आपने ये काम करना, अगर बताना ही है तो देखो फिर क्या ईमान है किसी का, आपको कुछ होता ही नहीं, अब कोई आपको बताएगा जी आपको मन मुनकर देखें तो जी आपको रोकना चाहिए, ये बताने की बात है, तुम्हारे अंदर खुद इतनी ईमानी गैरत होनी चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी हो रही, क्यों हो रही है, क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा में जाके बैठते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों इतनी ज्यादा पेन होती थी, इतना फील करते थे कि क्यों यहाँ पे ये बुराइयां हो रही, क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पाते थे लेकिन कितना दर्द था अंदर, क्यों माशरे के अंदर ऐसा है। आज अपने घर के अंदर देखते हैं हम तो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे अपने बच्चे गलत काम कर रहे थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अलग बात है बच्चे सुने नहीं और आप उनको बताते जा रहे हैं, मगर अगर ऐसा नहीं है और आपके सामने बच्चे गलत काम कर रहे हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं छोड़ो ना बच्चे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो ऐश करने दो, आपकी बेटियां ऐसे ड्रेसअप होके बाहर जा रही हैं, आपको पता है कि ये गलत है लेकिन आप कभी कहते नहीं उनको, कोई मना नहीं करते आप, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपने टर्म्स बच्चों के साथ अच्छे रखने, तो क्या आपने नागवारी की। देखें हमारे सियासी लीडरों को कोई बुरा कह दे ना तो हम आग बगोला हो जाते हैं, चाहे कोई सही कह रहा हो, जिस जिस की भी किसी सियासी लीडर के साथ कोई भी एफिलिएशन है, आप देख के कह के देखें जरा, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई बारूद में तीली डाल दी हो, फट जाते हैं लोग। फिर आपकी अपनी शान में कोई जरा भी गुस्ताखी कर दे, फिर देखो वो अपने घर पहुंचेगा कैसे, ले तय करके रख देंगे। इनमें तो हम बड़े अकलमंद हैं, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, उसके रसूल के हुक्मों को तोड़ा जा रहा हो, तो हमें कोई फर्क ही ना पड़े, ये किस किस्म की मोहब्बत, उससे ज्यादा तो मोहब्बत आपको अपने सियासी लीडर से है, अपनी पार्टी से है, इसी तरह और लोगों के कई भी एफिलिएशन हो सकती हैं, सिर्फ सियासत ही नहीं, कोई चीजें हो सकती हैं जिन पे वो जरा सी बात के ऊपर भड़क उठते हैं, उनके खानदान को कुछ कह दिया जाए, उनके बड़ों को कुछ, अबाओ अजदाद को कुछ कह दिया जाए, उनकी बरादरी को कुछ कह दे, किसी के लिए कुछ है किसी के लिए कुछ है, फिर देखें उसके बाद वो क्या करते हैं,
लेकिन क्या अल्लाह की जात और उसके रसूल की बात ही इतनी सस्ती है कि उसके ऊपर किसी को कुछ भी ना हो? अपने सामने देखते रहे, मुस्कुराते रहे। हाँ, हमारे टर्म्स क्यों खराब हो भाई? हम क्यों अपने ऊपर ले? हमें क्या पड़ी है? याद रखिए, तामरूना बिल मारूफ, फिर भी लोग कर लेते हैं। आ जाओ भाई नमाज पढ़ लो, आ जाओ भाई ये कर लो वो कर, लेकिन तनहाउना अनिल मुनकर तो ऐसे है जैसे भेड़ों के छत्ते में आपने हाथ डाल दिया। वो तो करने खड़े हो तो फिर देखो जरा, लोग तो फिर पीछे पड़ जाते हैं। और ये किसको गवारा हो? कहते हैं हम क्यों अपने पीछे डालें किसी को, हमें क्या मुसीबत है? एक रिवायत में आता है कि जो शख्स किसी मुकाम पर खड़ा हो और हक बात कह सकता हो, और उसको हक बात कह देनी चाहिए, क्योंकि ये हक कहना उसकी मौत को मुकद्दम कर सकता है, ना उसकी लिखे हुए रिस्क से महरूम कर सकता है, यानी ना उसकी मौत को जल्दी ले आएगा ना उसको रिस्क से महरूम कर देगा। तो तुम बोल तो दो ना, तो कौन सी तुम्हें मौत आ जाएगी कि भाई इसको कुछ मैंने कह दिया तो मुझे मौत आ जानी? अगर तुम हक बात किसी जगह पे कह सकते तो कह दो वहां पे, वो तुम्हारी मौत जल्दी नहीं आ जाएगी और ना ही तुम्हारा रिस्क से वो तुम्हें महरूम कर सकता है कि तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। लेकिन हम नहीं कहते क्योंकि हमारे टर्म्स खराब होते हैं ना। तो उल्टा आज वो वक्त आ चुका है कि इससे उलट काम हो रहे हैं, और वो उलट काम क्या है कि हम बुराई को भलाई कह रहे हैं और भलाइयों के ऊपर तेवरियां चढ़ा रहे हैं। कि जब कोई बुराई की बात हो तो हम उस पे क्या कहते हैं, उसकी बुराई की बात को देखकर क्या कहते हैं? हम किसी को देखते हैं मसलन है कि उसने ऐसा चुस्त लिबास पहना हुआ कि वो सी थ्रू है, या इतना चुस्त है कि उससे उसका सारा जिस्म पता चल रहा है, उसकी शेप। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी, खुशबू भी नहीं पाएगी। और हम क्या कहते हैं? बहुत स्मार्ट लग रही हो, वाह क्या बात है। हम ऐसे कमेंट्स देते हैं फेसबुक पे, उस पे हम जाके उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि तन्हाउना अनिल मुनकर, नहीं रोकना मुनकर से, और तामुरूना बिल मारूफ, सिर्फ इससे नहीं होता कि आप किसी को खड़े होकर डांट रहे हैं या किसी को हुक्म दे रहे हैं या किसी के ऊपर हुक्म चला रहे हैं या किसी को जबरदस्ती कुछ कह रहे हैं। आप क्या करते हैं जिस वक्त आप बुराई के ऊपर इनकरेज करते हैं, तो इनकरेजमेंट किस पे होनी चाहिए थी? तामर किस पे होना चाहिए था? आपको किस पे हुक्म देना था? मारूफ पे, इनकरेजमेंट, शाबाशी, हौसला अफजाई, वो भी सारा अमर में आता है। और आपने किस पे तामरून किया? मुनकर पे। समझ आ गई आपको बात? जिस वक्त के हम लोगों को कहते हैं कि नहीं, बोला आप ना पढ़ना, ये तो आपको वहाबी बना देंगे, ये कुरान, इनसे पढ़ने की नहीं जरूरत है, क्या कर रहे होते हैं? क्या कर रहे होते हैं? कुरान से रोक रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मारूफ का हुक्म दे रहे हैं या मारूफ से तन्हाउना कर रहे हैं? आज तो मारूफ से मना किया जाता है और मुनकर को अप्रिशिएट किया जाता है। कोई हिजाब लेना शुरू कर दे तो तुम क्या मासी बन गई हो? तुम क्या, देखो जरा अभी वो तुम्हारी एज आई है, हटाओ इसको। क्या किया हमने? खुद खुद सोचें, हमारे कमेंट्स सोचें, हमारी इनकरेजमेंट सोचें, किस चीजों के ऊपर होती है, खुद आप देख लें। कोई क्लासें लेना शुरू हो गया, हाँ देखा ना, तो तुम हर वक्त बैठी रहती हो इसीलिए इतनी मोटी हो गई हो, वेट गेन हो गया तुम्हारा, तो तुम बैठी पढ़ती रहती ना, आप देखो अपनी हालत क्या तुमने बना ली, शक्ल देखो अपनी, बस पढ़ाइयाँ करती रहती। आप कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हो उसको नहीं कहेंगे, कोई दिन रात जॉब कर रही है उसको नहीं कभी कहेंगे कि तुमने अपना हाल क्या बना लिया, इसको कहेंगे, क्योंकि तो ये हमसे नहीं गवारा होता। मुनकर के ऊपर हम शाबाशियां देते हैं और मारूफ कोई करे तो हम उसको डिस्करेज करते हैं अपने कमेंट से, अपनी बातों से। और आज हमारी बातें क्या है, बहुत अच्छा डांस करती है, इतना अच्छा खूबसूरत इसका डांस होता है ना, देखने वाला है ये माशाल्लाह। हम मारूफ के ऊपर कैसे हम इनकरेजमेंट कर रहे हैं, ये देख लें, ये मारूफ है, ये हमारे नजदीक मारूफ बन गया। तो पहले तो इल्म लेने की जरूरत है ना, मारूफ और मुनकर है क्या। हमने तो मारूफ और मुनकर के क्या किससे लिए, सोसाइटी में जिस चीज को कहा जा रहा है, चाहे वो नंगापन है, चाहे वो जिना है, चाहे वो डेटिंग है, चाहे वो बेहयाई के और काम है, वो सारे वो हमारे लिए मारूफ बन चुके हैं। सब मारूफ है, क्यों? इसलिए कि सब उसको कह रहे हैं। अगर किसी ने बेपर्दगी में कोई घूम रहा है तो वो हमारे लिए मारूफ है, और कोई हिजाब और अबाय में है तो वो हमारे लिए मुनकर बन चुका है। किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये हमारे लिए मुनकर है। मारूफ हुआ है कि देखो इसके कितने फ्रेंड्स हैं। यानी हम आप सोशल मीडिया पे देखें किन चीजों को मारूफ किया जाता है, किन को मारूफ कहा जाता है, और फिर उसके ऊपर कमेंट्स देख लें। कोई हलाल कमा रहा हो तो उसको तो कहा जाता है तुम तो पागल। कोई हराम से अपना बिजनेस फ्लरिश कर ले और लाखों से करोड़ों बना ले तो वो हमारे नजदीक बड़ा अकलमंद है। क्या बात है इसकी, खुद देखें कि आज वो उम्मत जिसका काम ये था कि वो और लोगों को भी मारूफ की दावत देती और मुनकर से रोकती, वो उम्मत तो खुद ये भूल चुकी है कि मारूफ होता क्या और मुनकर होता क्या। जब आप शादियों पे जाती हैं तो आप किन चीजों के ऊपर लोगों को एप्रिसिएशन देते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं? तो आप सिर्फ खुद गुनाह से बच जाएं ये काफी नहीं है, जब तक आपके अंदर गुनाह की नफरत ना हो, और ये मतलूब है आपसे, ये मतलूब है, और ये आपकी गैरत ईमानी का हिस्सा होना चाहिए कि आप गुनाह को गुनाह समझें, गुनाह को गुनाह समझें खुदा के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम अमर बिन मारूफ व नहीं अन मुनकर के फरीजे को छोड़ दोगे तो बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें अपने अजाब की लपेट में ले लेगा, फिर तुम उससे दुआएं मांगोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी। तो अमर बिन मारूफ और नहीं अन मुनकर का फरीजा छोड़ देना, तो क्या हम तो अमर किसका कर रहे हैं, मुनकर का, और नहीं किससे कर रहे हैं, मारूफ से। हम किस कदर पस्ती में गिर चुके हैं, उम्मते मुस्लिमा की कश्ती आज तूफान में फंसी हुई है। हम वो लोग हैं जिनका चमन उजड़ चुका है। ये ऐसी सोच, ऐसे रवैये, हमें दूसरों को बदलना था, उनको राह दिखानी थी, हम इंसानियत के लिए खड़े किए गए थे, और हमारे अपने ही हाल हो गए। आज मुनकर हमारे सामने टीवी पे चलता है, मुनकर हमारे सामने फोन पे चलता है, मगर हमें कोई परवाह नहीं, हम खुद भी उसके अंदर शामिल होते हैं। इसमें क्या बात है, ऐसे ड्रामे देखने से क्या फर्क पड़ता है, ऐसी फिल्में देखने से क्या है, उसमें जो लैंग्वेज यूज हो रही है, उसमें जो सीन आ रहे हैं, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता, हम क्यों रोके? तो ये इसमें क्या बुराई है, जब हमें खुद ही हम अंधे हो गए तो हम किसी को क्या बताएंगे? और ये कुरान पढ़ने वालों की हालात है, औरों के क्या कहने, और को तो क्या शिकायत करनी है, उनको तो बताना था, उनको तो को तो खुद नहीं पता, क्योंकि ये काम किस में होगा, सिर्फ गैर मुस्लिमों में नहीं होगा, ये काम हर एक के लिए होगा, अपने लोगों में भी होगा, बाहर वालों में भी होगा, मुसलमानों में भी होगा, गैर में, क्योंकि मुसलमानों में भी जरूरत होगी इसकी, तहमुरुना बिल मारूफ की और तनहाउना अनिल मुनकर की, और बाहर वालों में भी होगी, बाहर वालों के लिए डिफरेंट तरह से होगा, अपने अंदर वालों के लिए डिफरेंट होगा। तो अगर उम्मीद की जरा सी किरण नजर आती है ना, तो वो इन स्टूडेंट्स में नजर आ सकती है जो आज पढ़ रहे हैं, जो जो औरतें पढ़ रही हैं इन इदारों में कुराने पाक को सीख रही हैं, कि ये घर बदलें अब, और इनसे आगे उम्मत बदले, आगे नस्लें बदलें, ये बस इनसे उम्मीद की जा सकती है, वरना आवे का आवा बिगड़ा हुआ। और ये है वजह हमारी जिल्लत की आज, क्योंकि आज आप आगे भी पढ़ लेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा जिल्लतें कब आती हैं, खुद ही आज आपके लेसन में पता चल जाएगा। ये जो आप, हम हर वक्त ये सोचते हैं ना, अगर हम हक पे हैं, हम मुसलमान हैं, देखिए ना, आपको मामूली बात नहीं है, हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर हमारा ईमान है, आखरत पर ईमान है, रसूल पे, मैं हम पे जिल्लत क्यों है दुनिया में? बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं, क्यों हम जलील हो रहे हैं, क्यों हम ख्वार हो रहे हैं सारी दुनिया में, क्यों हमारी बेइज्जती? तो आज इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये अब जो उम्मीद है ना, वो आप जैसे लोगों से है, उनसे नहीं है जो नहीं कुरान पढ़ते। लेकिन अगर आप लोगों ने भी ये छोड़ दिया तो फिर कौन करेगा, कौन करेगा ये काम? तो इसके लिए अब हमें देखना है कि हमें कैसे ये काम करना है, अपने दायरे बनाने। पहले हमारा दायरा अपनी जात है, अपनी जात के ऊपर तो अमर बिल मारू नहीं नल मिलकर करो ना पहले, फिर उसके बाद बाहर है, फिर उसके बाद उससे बाहर है, फिर आप अपने पहले औलाद आती है, फिर अपना घर में जितने अफराद हैं, फिर अपने रिश्तेदार हैं, फिर अपने दोस्त अहबाब हैं, फिर और गैर लोग हैं, फिर और वर्ल्ड लेवल पे आप कहीं जुल्म होता हुआ देख रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज जितनी भी आप बुलंद कर सकते हैं, वो तन्हा निल मुनकर में है। जुल्म कितना हो रहा है दुनिया में, उसके खिलाफ आवाज उठाने को हमें क्या होता फिर? तो सबसे पहले हमें ये देखना है, पहले हम मतलब अपने आप को इस जगह पे रखें कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये मेरा फरीजा है। पहले तो ये सोचें, मैं कुरान पढ़ रही हूं, मैंने ये आयतें पढ़ ली, मुझे ये जरूरी करना। और फिर हर जगह पे जहां पे मैंने आपको बताया ना, नेकी का हुक्म देना आसान है, मुनकर से रोकना मना बहुत मुश्किल है, वो काम ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो जरूरी है। हम क्यों उस महफिल में जाते हैं जहां पे अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया जाता है, जहां अल्लाह के अकाम की धज्जियां बखेरी जाती हैं? क्यों जाते हैं वहां? डर है कि मेरे रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, मेरे दोस्त मुझे छोड़ ना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे ना, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन यौमि सू मिन लैलति सू मिन सआति सू मिन जारि सू, बहुत सारी लंबी दुआ है कि अल्लाह बुरे साथी से भी मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। तो क्यों हम उठते बैठते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ उठने बैठने से हमारा दीन खराब हो जाता है, या उठने बैठने से हमारे दिल से अल्लाह रसूल की मोहब्बत कम हो जाती है, दीन की मोहब्बत कम हो जाती है? क्यों? कुछ तो मोमिन बने, कुछ तो ईमानी गैरत होनी चाहिए। कहीं ईमानी गैरत नहीं है? तुम्हें तो लिन्नास, लोगों की सलाह के लिए पैदा किया गया था। अब नहीं कोई अमर बिल मारूफ कर सकते, नहीं अनिल मुनकर कर सकते, तो क्यों बैठते हो ऐसी जगहों पे? जब अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर होगा ना, तो दुनिया में इसलाह होगी, दुनिया में इसलाह होती है फिर। और फिर जब भी फिर बेवाओं यतीमों मिसकीनों का भी ख्याल होता है, तभी जो रिश्तेदारियां तोड़ रहे थे उनको कोई कहने वाला होता है, तभी कोई इंसान बेहयाई से भी बचता है, भाई लोग मुझे ये कहेंगे। लोगों का डर होता है अगर जब कोई किसी को कहने वाला ही नहीं, बिद्दतें कर रहे हैं लोग, हम क्यों कहें? जाके खुद ही उन्हीं बिद्दतों के मजलिसों में बैठ जाते हैं, नहीं फिर उन्होंने बुलाया तो अब क्या करें? कहना ही नहीं हमने कि भाई ये बिद्दत है, ये नहीं करो, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, कहते ही नहीं। क्यों कहें? खाने को मिलता है वहां पे, दावत होगी, मजे मजे के खाने मिलेंगे, तो जाएंगे हम वहां, चाहे कोई भी बिद्दत की मजलिस हो। तो किधर आज हम खड़े हैं, खुद सोचें, किधर आज हमारी ईमानी गैरत किधर है, ये बताइए। तो ये काम करना है, और इस काम में जो एहतियातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, कि जो बहुत एहतियात की बातें हैं, बहुत जरूरी है जाननी, वो ये कि जब हम ये काम करेंगे ना, तो बाज दफा होता ये है कि अपने अंदर तकब्बुर आने लगता है, अपने आप को इंसान बड़ा नेक समझने लगता है, फिर तो उनके बस खामियां नजर आने लगती हैं, फलाना वो भी ऐसे कर रहा है, फलाना वो भी ऐसे कर रहा है, वो देखो लोग क्या करते हैं, वो देखो वो क्या करते हैं, इनको तो समझा समझा के थक गए हैं। तो अब क्या आने लगता है आहिस्ता आहिस्ता, अपने अंदर तकब्बुर, कि मैं तो देखो कितनी अच्छी हूं ना, और ये देखो कितने बुरे, देखा ये कैसे करते हैं, देखा ये क्या। अच्छा, सिवाय उस बंदे के, बाकी सारों को वो बातें कहनी, उसको नहीं जाके कहनी कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, हालांकि मना तो उसको करना था ना जो बुरा कर रहा था, हम बस प्रचार करते हैं इधर उधर। तो अपने अंदर तकब्बुर आने लगता है कि हम कितने अच्छे हैं ना, देखो हम तो नहीं ये करते। इस चीज से बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि शैतान बड़ी जल्दी नेकी का जो एक तकब्बुर है वो इंसान के अंदर पैदा कर देता है। दूसरे, जब दूसरे को मना करना और जो नहीं मना उसके बाद
करते हैं, बस उल्टे सीधे फिर काम शुरू कर देते हैं। बहुत गुस्सा आने लगता है। ने गुस्सा नहीं किया था। फिर तीसरी चीज क्या होती है, अपनी फिक्र खत्म हो जाती है। फिर बस हर टाइम अब मैं उसको किसको मना करूं, तो उसको किसको मना करूं। मैंने आपको क्या पहले बताया, अपने आप के ऊपर सबसे पहले वर्क करना शुरू करना है। लेकिन ये चीज हमें रोकना नहीं चाहिए कि हम किसी को क्या मना करेंगे, हमें तो खुद में इतनी बुराइयां। तो ये याद रखिए कि एक असलाफ में से किसी ने फरमाया बड़ी अच्छी बात, कि अगर हम इस चीज को देखें कि पहले मैं खुद सही हो जाऊं फिर उसके बाद दूसरों को बताऊंगा, मैं पहले खुद कामिल हो जाऊं फिर दूसरों को मना करूंगी, मेरे अंदर तो खुद बुराई है, तो वो फरमाते हैं कि फिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ये काम नहीं कर सकता था, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई भी परफेक्ट नहीं, फिर तो किसी को भी नहीं ये काम करना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट कौन है, सारे ही पहले फिर अपनी अपनी फिक्रें करो। तो ठीक है, वो अपनी फिक्र भी करनी है लेकिन साथ ये काम भी करना। मगर जो मैं पॉइंट बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये ना हो कि दूसरों की फिक्र करते करते अपनी भूल जाए। अपनी फिक्र है नहीं, अपने खुद क्या करना है। ये बच्चे ऐसे करते हैं, हस्बैंड वो करते हैं, हमसाए ये करते हैं, मेरी दोस्तें तो ऐसा करती हैं, फलाने ये करती है, हर टाइम दूसरों के ऊपर नजर। बस घर वाले भी तंग पड़ जाएं कि क्या मुसीबत इसने कुरान पढ़ना क्या शुरू कर दिया, हमारे ऊपर मुसीबत डाल दी। ये तरीके नहीं होते। तो हिकमत इसमें बहुत जरूरी है कि हिकमत के साथ हमें चलना है। मैंने आपको ये बताया कि अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप डंडे लेके खड़े हो जाए, नहीं अनिल मुनकर का ये नहीं मतलब। आप समझ आ गई ना कि किस किस तरह के मतलब है, कहाँ आप किस तरह से डील करेंगे, ये भी हिकमतों के साथ है। ठीक है, तो अब ये ना हो दूसरों की कमियां हमें अपने आप की कमियां देखने से माजूर कर दे। दूसरों की कमियां देखते देखते हम अपने आप को ही भूल जाएं। खुद तो कुछ कर लो सीधा, हर वक्त दूसरों का भाई बस करो, कभी अपने ऊपर भी तवज्जो दे दो, अपने अंदर भी झांक लिया करो। अपने आप को अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कराना, अगर हमारे से अपने आप से ही नहीं कराया जाता, हमने क्या किसी को कहना। अपनी जात के ऊपर तो सबसे पहले डंडा चला सकते हैं ना, वो अपनी जात को छोड़ा हुआ है, बस लोगों के लिए बस उधर बने हुए हैं, मास्टर इधर बनी हुई है, टीचर उधर बनी हुई है, कुछ और। तो ये बात को भी बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ तीन चार पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने इस काम को करने में। एक क्या, अपने अंदर तकब्बुर ना आने दीजिएगा। दूसरा क्या, दूसरों की कमियां आपको अपने आप को देखने से आजाद ना कर दें, अपनी परवाह करने से आजाद ना कर दें। तीसरा क्या, गुस्से में नहीं आना है। गुस्से में आने की वजह से भड़कते फिरें, उसके बाद गुस्सा करते फिरें, और बजाय अमर बिल्ला मारूफ करने के और ही मुसीबत हो जाए कि कुछ और ही कर दिया उसको, बिल्कुल ही दीन से भगा दिया, इतना उसके ऊपर बरसे, इतना उसको वो किया। बाज का मैंने सुना, उन्होंने कहा जी फलां वो तो अपने बच्चे के ऊपर इतना वो करता था, उसने यानी उसको यानी अपने बच्चे को नमाज के ऊपर ऐसा मारता और इस तरह का उसके ऊपर टॉर्चर करता था कि वो बच्चे को नमाज से ही नफरत हो गई। लो अब इसके अमर बिल मारूफ का क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ उसका। तो ये बात है कि हिकमत इसके अंदर बड़ी जरूरी है। इस काम को अगर हिकमत से नहीं करेंगे तो उल्टा भी असर हो सकता है। बाज बच्चियां मैंने देखा, उन्होंने मुझे खुद बताया कि हम इसलिए नहीं मस्जिद जाते, वहां पे ये आंटियां हमें इतना कमेंट्स करती हैं, इस तरह की बातें हमें सुनाती हैं, तो हम नहीं जाते। तो इसमें पहले मुझे इतना मुझे खुद डर लगता है ना ऐसी चीज से कि मुझे बहुत देर मैं किसी को कहने से पहले बहुत सोचती हूँ, प्लान करती हूँ कि कैसे मैं इसको किस तरह से बात करूं। क्यों, इसलिए ये ना हो कि मेरी किसी गलत अप्रोच से ये और ही उससे भाग जाए, ये उसको नफरत हो जाए, या ये मस्जिद ही ना आए, या ये इस काम से ही ना इसको हो जाए कि इस काम की वजह से मुझे इस बातें सुननी पड़ती। तो इसके अंदर बड़े तरीके के साथ चलना होता है। ठीक है, तो ये काम करना है लेकिन करना कैसे है ये भी हमें सोचना चाहिए। ये कहना बड़ा आसान होता है, चलो तुम ये खत्म करो, चलो ये करो वो, बस ये करके सारा दिन यही बोलते जाए, बड़ा आसान होता है हिकमत के साथ, क्योंकि ये काम ना खैर ख्वाही का काम है। ये काम ऐसा नहीं है कि बस हमने सर से उतारना, जी हमने तो कह दिया था हमारी भला से अब करें नहीं करें, नहीं, ये खैर ख्वाही जैसे पैगंबरों में खैर ख्वाही होती थी ना, ये खैर ख्वाही का काम है। ये ऐसे मैं आपको अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो पता है ये काम क्या है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, कि आप खुद जाग गए हैं, अब आपने सोतों को जगाना है, अब आपने सोतों को जगाना है, बस ये काम है। आपको खुद पता चल गया है कि क्या, आप जाग गए, आपको खुद पता चल गया कि खतरा सामने है क्या। जैसे कुछ लोग सोए हुए हैं, वो खतरे में है, आग लग गई है, आग सामने है, अब कैसे जगाएंगे उनको, ठीक है। और अगर ये काम ना करें, बिलफर्ज हम कहते हैं नहीं जी हमसे नहीं, नहीं हम नहीं करते, आगे भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक सूरह माईदा की आपको मैं आयत बताना चाहती हूँ, 78-79। बनी इसराइल की आपको पता है पहले उनके जिम्मे था ना ये काम, वो खैर उम्मत थे, उनको अल्लाह ने फजीलत दिया, पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, लुअन अल्लदीन कफरू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा बिन मरियम, लानत की गई बनी इसराइल पे जुबान से ईसा अलैहि सलाम की और दाऊद अलैहि सलाम की, यानी दोनों नबियों ने उनके ऊपर लानत की। क्यों क्यों लानत की, उनकी तो ये कौमें थी। दालिका बिमा आसा हुआ क्या नु या तदून, ये इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे, हद से बढ़ने वाले थे। और दूसरी बात सुने जो 79 आयत में, कानू ला यतनाहुना अम मुनकर फालू, वो नहीं रोकते थे मुनकर से जो उन्होंने किए थे, जो बनी इसराइल मुनकर करती थी वो इससे ये नहीं, ये लोग रोकते थे। तभी समा क्या नहीं, ये फालू कितनी बुरा काम है जो क्यों नहीं रोकते थे, इस वजह से उनके ऊपर लानत की गई। ये अल्लाह ताला को इस बात के ऊपर गजब आता है ना कि उसकी नाफरमानी देख रहे हो और तुम्हें नहीं कुछ फर्क पड़ता, तुम डसे मस नहीं होते, तो ये अल्लाह को गवारा नहीं है। ये कैसे हो सकता है एक बंदे में ईमान हो और उसको कोई फर्क ही ना पड़े, अब वो हंस हंस के बैठा हो उसी मजलिस में कि नहीं कोई बात नहीं फिर माइंड कर लेंगे, वो मुस्कुराता रहे और उसके माथे पे तेवरी भी ना चढ़े, चाहे वो अपने बच्चे हैं, चाहे वो दोस्त अहबाब हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, नहीं नहीं माइंड करेंगे वो, फिर उनका माइंड करना बुरा लगता है और उनका माइंड करना गवारा नहीं है। और अल्लाह ताला माइंड कर ले तो ठीक है, एक हदीस आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने आप को हकीर ना जाने। सहाबा ने कहा या रसूल्ला हम में से कोई शख्स कैसे अपने आप को हकीर जान सकता है, आपने फरमाया वो ये गुमान करे कि उसके ऊपर कलाम की गुंजाइश है, फिर वो कलाम ना करेगा, यानी कुछ कह सकता है मगर नहीं कहेगा। तो अल्लाह अज्जा वजल कयामत के दिन इससे फरमाएगा तुम्हें मेरे मुतल्लिक किस चीज ने कलाम से रोका था, क्यों नहीं तुमने कुछ बोला, वो कहेगा लोगों के खौफ ने। अल्लाह ताला फरमाएगा मैं इस बात का ज्यादा हकदार था कि तुम मुझसे खौफ खाते ना कि तुम लोगों से डर रहे थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हो गए तो इनके उलमा ने उनको मना किया था, शुरू में मना किया था, लेकिन वो बाज नहीं आए, जब वो बाज नहीं आए तो उलमा उनकी मजलिसों में बैठते रहे और उनके साथ मिलकर खाते पीते रहे, ठीक है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो अल्लाह ताला ने उनमें से बाज के दिल उन जैसे ही कर दिए, फिर यानी फिर सबके दिल एक ही हो गए, अब उनको वो बुराई बुराई नहीं लगती थी। इसीलिए आप देखें ना जब हम बुराइयों के साथ बैठते रहते हैं, बुराइयों को देखते रहते हैं, उनको वॉच करते हैं, फिर उसके बाद वो बुराइयां हमारे लिए कितनी कॉमन हो जाती हैं, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लें आज से कोई 20-25 साल पहले कई चीजों के नाम, ये जो आज मैं कौमे लूट के अमल का कह रही हूँ, ये यकीन जाने यानी जब तक मैं बड़ी हो गई थी हमें पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज होती है, हमें नहीं पता था, इन मुल्कों में आके पता चला। इसी तरह ये नंग धड़ंग टीवी पे इन चीजों में कोई होता ही नहीं था इस तरह की चीजें, और आज देखें क्या लिबास हैं और क्या टॉपिक्स हैं और क्या चीजें दिखाई जाती हैं। इसी तरह कितनी सिंपल शादी ब्याह होते थे, कितने सिंपल होते थे, आज देख लें कि वो क्या बन गए। पहले लोग तवायफों के अड्डों पे जाया करते थे कोई इस तरह की नाच गाने देखने के लिए और नाचती औरतों को देखने के लिए, आज लोगों ने अपनी बेटियों से नाच करवाते, अपनी बहनों को नाचते हुए लोगों के सामने नचवाते मेहंदियों पे और इन पे, और बड़े फखर करते हैं।
वो चीजें जो कितनी बुरी समझी जाती थी, आज क्या हाल है? क्यों ऐसे, क्यों हमारे पैमाने बदल गए? क्योंकि बुराइयों को देख के हमने उनको रोका नहीं। जब बुराइयां शुरू हो रही थी तो हमने, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, क्या है ना, इतनी भी नहीं होना चाहिए, क्या है, एंजॉय करने देना। आप लोग तो बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। तो जब आप वो जो आगे जाके एक बड़ी बुराई बननी है उसके असबाब को नहीं रोकते, वहीं से उस चीज को वहीं खत्म नहीं करते जब वो शुरू हो रही होती, तो फिर आगे जाके यही होता है जो आज हो रहा है। यही होता है, जब छोटी छोटी बच्चियों को भी ऐसे लिबास पहना जाते तो वो बड़ी होके भी फिर वैसे ही पहनती, फिर आप क्यों रोकते हैं? जब इस तरह की चीजें देखिए एक दिन में नहीं होती, ये टाइम लगता है कि शैतान पहले छोटी डोज देता है। क्यों कहा गया कि वला तत्तबी खुतुआत शैतान, इसके कदमों की पैरवी ना करो, क्योंकि ये इसके कदम है। ये एक छोटी डोज देता है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर एक एक स्टेप लेके जाता है आगे। ये एक दिन के नहीं काम होते। तो शैतान किस तरह हमारी वो नॉर्म, जो आज हमारी नानियां दादियां जिंदा होके आ जाएं और वो देखें, तो वो तो हैरान ही हो जाए। सिर्फ उनके टाइम से आज तक इतना बदल चुका है, तो उससे पहले का तो क्या कहने। सहाबा के दौर का तो बिल्कुल ही आप छोड़ देना, हम सिर्फ 50 साल भी पीछे चले जाएं तो क्या क्या से क्या बदल चुका है आज। और ये सिर्फ इस वजह से कि हम बुराइयों को बर्दाश्त करते रहे, हमने कुछ नहीं बोला और वो आगे से आगे बढ़ती चली गई। आज शराबें पीना या जिनाकारियां या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या जितनी और आप बुराइयां देख लें, बेहयाइयों के सीन्स देखना, नाच गाने को वॉच करना, ये सब चीजें कुछ भी मुश्किल, कोई बात ही नहीं रह गई। झूठ बोलना, रिश्वतें लेना, धोखेबाजी करना, हराम को खाना, हराम कमाइयां करना, ये कोई मसला नहीं है। औरतों के चुस्त लिबास पहनना, ये कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाथ पे हाथ मार के गैर महरमों से बातें करना, क्या इसमें प्रॉब्लम? आप पागल लगते हैं, वो तो नॉर्मल लगते हैं, क्योंकि हम बर्दाश्त करते चले गए, हमने इसको अलाउ किया, हम मुजरिम थे, इस वजह से आज का ये दिन देखना पड़ा। ठीक है, कहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तक एहतियात बताई कि जब बच्चे बड़े जाएं उनको साथ ना लेटाओ, जब दो बच्चे, दो लड़के या दो लड़कियां एक ही बिस्तर के अंदर, एक ही लिहाफ के अंदर इकट्ठे ना हो, कितनी एहतियातें बताई, हमने कोई फॉलो ही नहीं किया। हमें क्या, वो तो ना कुरान को जाना ना सुन्नत को जाना, हमें क्या पता। तो बुराइयां पनपने लगी फिर, और आज स्कूलों के बच्चों को भी पूछ लो तो उनको भी इन बातों का पता, कहां से पता चलेगा, बुराई को आम होने की वजह से। तो बुराइयां आम इस तरह से होती हैं, और बनी इसराइल के उलमा ने पहले उनको मना किया, फिर उनके साथ ही खाते पीते रहे, उनके बाद कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद फिर सबके दिल एक जैसे हो गए, यानी वो जो करने वाले थे वो भी, और जो ये थे, अब इनको ये बुराई लगती नहीं जब उनके साथ बैठ के मजे कर रहे। अल्लाह अकबर। और फिर एक और हदीस में आता है जो अबू दाऊद की, इब्ने माजा की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी कौम में रह के गुनाह कर रहा हो और वो लोग इसको गुनाह से रोकने पर कादिर हो और ना रोके, कि हमें क्या मुसीबत है, हम क्यों रोके, तो अल्लाह ताला इन सबको मरने से पहले अजाब में मुब्तला करेगा सबको। फिर एक और जगह पे आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मेरी उम्मत में उन लोगों को देखो जो जालिम को जालिम कहने से डरे तो तुम उनसे अलग हो जाओ। फिर एक और हदीस में आता है, इब्ने हब्बान की है, तरगीब व तरहीब में भी है, जो शख्स हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे और नेकी का हुक्म ना दे और बुराई से ना रोके, वो हम में से नहीं है। अब और कितनी हदीसें चाहती हैं, और कुरान की आयत ये सामने है, और हम में से नहीं है, तो फिर देख लेना आज आप हमारी जिल्लतों की जो दुनिया में हालात हैं, जो हमारे जवाल के हालात हैं, वो आप सब देख रहे हैं। फिर हम पूछते हैं क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं तुमने ये काम ही खत्म कर दिया, तुम तो खैर उम्मत बने ही नहीं। हज़रत उमर के कॉल के मुताबिक अब जो इस शर्त को पूरा करेगा वो ही खैर उम्मत में से है, जो ये काम नहीं करेगा वो उसमें से नहीं है। तो हम फखर तो बहुत कर रहे हैं कि हम खैर उम्मत हैं, देखो हम बेहतरीन उम्मत, हमारे बारे में, ये हादीस हमारे बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में है जो ये काम करते हैं, वो है खैर उम्मत। और हम किधर हैं? हमारे अपने खानदानों में जुल्म हो रहा होता है, हमारी अपनी बाज दफा माएं हमारी भाभियों के साथ जुल्म कर रही होती है, हमारे अपने भाई बाज दफा अपनी बीवियों के साथ कोई गलत बात कर रहे होते हैं, हमारी अपनी बहनें गलत काम कर रही होती, हम नहीं रोकते, हम कहते हैं हमें क्यों, हमें क्या, मैं क्यों बिगाड़ू। उनको भी आप अमर बिल मारूफ करेंगे और नहीं मुनकर करेंगे, मगर वालदैन को करने का एक और तरीका होगा। तो ये हम देखते हैं अपने सामने मुनकरात, मगर हम अगर नहीं कुछ बोलते, नहीं कुछ कहते, नहीं हमें कुछ बुरा लगता दिल में, तो बुरा जान लो, वरना तो राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है, कैसे गवारा करते हैं हम अपनी दोस्तों से सुनते हैं वो गलत कर रही हैं, हम कहते हैं हम क्यों कहें, मेरी दोस्ती खराब होती है, वो अपने हस्बैंड के साथ गलत कर रही हैं या अपनी ससुराल में गलत कर रही हैं, उसको एनकरेज करेंगे, उसको और हौसला अफजाई करेंगे, तू सही कर रही है, ऐसे ही कर, क्योंकि हमने उसकी हाँ में हाँ जो मिलानी है, हमने उसको खुश करना है बस। अब मुनकर कर रही तो करती रही, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर इसको कहूंगी कि नहीं तुम गलत कर रही हो देखो, तो वो उसको बुरा लगेगा, तो मैं क्यों कहूँ। तो इट्स एवरीवेयर, आप ये नहीं कर सकते कि, आप ये नहीं सिर्फ कह सकते कि कश्मीर में अगर जुल्म हो रहा है तो वो ही बस मुनकर है, उसके खिलाफ ही सिर्फ मैंने आवाज उठानी, हर जगह हर जगह आप जिधर देख रहे हैं, जिधर का सुन रहे हैं, जो मुनकरात आप देखते हैं उनको रोकने की कोशिश करें। आप वहां जाके तो नहीं आप रोक सकते, ना हाथ से रोक सकते, कुछ जुबान से ही बोल दो, कई और जगह है जहां पे आप जुबान से भी नहीं बोल सकते, वहां पे जुबान से बोलने पे भी कैद कर दिया जाता है, तो दिल में ही बुरा जान लो, कुछ तो करो, या कुछ भी नहीं है तुम्हारे बस में, उस पे भी डरते हो, तो जितनी आपकी कुदरत है उसके मुताबिक तो एक्शन लेना। वलो आमन अहलुल किताबी लकाना खैरन लहुम, अगर अहले किताब ईमान ले आते तो बेहतर होता उनके लिए, यानी अहले किताब अगर ये काम करते और वो भी ईमान ले आते तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होता, वो भी खैरे उम्मत में से हो जाते ना फिर, वो भी ईमान ले आते अगर। लेकिन क्या है, मिनहुमुल मोमिनुना, उनमें बाज मोमिन हैं, अक्सरहुमुल फासिकून, लेकिन अक्सर उनके फासिक हैं, उनमें जो मोमिन हुए अब्दुल्ला बिन सलाम थे, देखें अब कितने बड़े वो आलिम दीन थे उनके, लेकिन उन्होंने जरा भी इस चीज की परवाह नहीं की कि मेरे साथ क्या ये करते हैं, वो ईमान ले आए जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हक पे हैं, हक बात पे, चंद सवालात किए थे और बस ईमान ले आए। इसी तरह सालबा बिन साईद थे, उसैद बिन साईद थे, असद बिन उबैद थे, काब अहबार थे, ये सारे वो थे जो बड़े बड़े उनके थे उलमा और बड़े बड़े इनके लोग थे, लेकिन वो इस्लाम लेकर आए, मगर अक्सर इनमें से फासिक हैं। और आप देख लें आज भी आप देख लें कि अक्सरियत इनकी फासिक फासिक फाजिर है, अपने दीन पे भी नहीं चलते, किसी और को कि दीन क्या अपनाने की बात करनी, अपने दीन पे भी नहीं इनको चलने की तौफीक है। आप देख लें इनके हाँ भी, इनके भी बाइबल में जिना हराम है, सूद हराम है, वो कहाँ इसको फॉलो करते हैं, अक्सर हुमुल फासिकून।